आज के गीतामृत के कार्यक्रम में पिछले से पिछले बुधवार को हमने यहां से चर्चा प्रारंभ की थी। प्रथम अध्याय का शीर्षक जो श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप में दिया है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज, अर्जुन सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, दोनों सेनाओं का निरीक्षण अर्जुन कर रहे हैं। और अर्जुन ने वही सेना कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर देखी और उन्हीं योद्धाओं को जब अर्जुन ने अन्य जगहों पर देखा तो अर्जुन में मतभेद हुआ, स्वयं उनके अंतःकरण में मतभेद हुआ कि क्या ये वही हैं। हालांकि थे वही, लेकिन अर्जुन का यहां पर दृष्टिकोण बदल चुका था प्रथम अध्याय में। तो हमने सुना कि उस समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर मुड़े और भगवान श्री कृष्ण को फिर पूछना प्रारंभ किया। तो यदि आप देखो भगवद गीता में दो दफा अर्जुन अपनी शरणागति व्यक्त किए हैं, दो दफा अर्जुन कृष्ण परायण हुए हैं। कब कब कौन कह सकता है? जब भगवद गीता सुनने से पहले अर्जुन भगवान के समक्ष जाकर कहते हैं, शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि हे कृष्ण अब मैं आपके श्रीमुख से कौन से संबंध में सुनना चाहूंगा आपके साथ। उस श्लोक से पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक मित्र का संबंध स्थापित किए थे, बचपन से लेके कब तक, उस श्लोक तक। और उसके पश्चात या उस श्लोक से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध बदल दिया। वही अर्जुन, वही भगवान, अब संबंध क्या स्थापित हो गया है? गुरु और शिष्य का। और गुरु और शिष्य के बीच का संबंध क्या होता है कि शिष्य गुरु के शरणागत हैं, समर्पण, सरेंडर। तो भगवद गीता की शुरुआत में भगवान भगवद गीता सुनाने से पहले अर्जुन शरणागत हुए और पूरी भगवद गीता सुनने के पश्चात करिष्ये वचनम तव, अर्जुन की शरणागति फिर देखी जाती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि मुझे शरणागति की आवश्यकता है जब मैं पूरी गीता सुन लूंगा। ये जब हो जाएगा ना पूरा गीतामृत, पता नहीं कल के अवतार के आने से पहले होगा कि नहीं, तो हमें लग रहा होगा कि जब तक मैं पूरी गीता समझ नहीं लेता, पाठ नहीं कर लेता, 18 अध्याय 700 श्लोक, तब तक मैं कैसे, अर्जुन कब शरणागत हुए 18 अध्याय में, कोई कह सकता है? नहीं, अर्जुन की शरणागति प्रारंभ हो चुकी थी प्रथम अध्याय से, शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, उस श्लोक से। तो इसलिए अर्जुन हमें यह सिखा रहे हैं कि हमारा एक दृष्टिकोण है और फिर जब हम शरणागत होते हैं भगवान को तो हम भगवान का दृष्टिकोण धरोहर के रूप में लेते हैं। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस, वी इनहेरिट द विजन ऑफ कृष्णा, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ सरेंडर एंड दैट इज द एंड ऑफ सरेंडर। और तब जाकर वो जब इनिशियल सरेंडर अर्जुन का नहीं होता, इसलिए वो एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है गीता में समझना, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न, क्योंकि गीता तो कोई भी खोल के पढ़ सकता है, वो तो सब जगह गीता उपलब्ध है, लेकिन गीता को समझना एक है, खोल के पढ़ लेना, और एक है समझना। तो जब तक कि वो एक श्लोक हम अपने जीवन में केवल पढ़ते नहीं, उतारते नहीं जब तक, तब तक गीता का मर्म नहीं समझ पाएंगे। तो अर्जुन वो श्लोक क्यों कहे, हमारे आचार्य इतने टीका लिखे हैं उस श्लोक के ऊपर कि अर्जुन को क्या आवश्यकता थी वो श्लोक कहने की। बस वहां पर भगवान श्री कृष्ण थे, साधारणतः जब वार्तालाप चलता है तो अब दो मित्रों के बीच में वार्तालाप चल रहा है तो कोई एक मित्र दूसरे मित्र को ऐसे क्यों कहेगा, भाई ऐसा करो अभी तू थोड़ा ऊपर बैठ, थोड़ा गुरु बन मेरा। साधारणतः हम नहीं देखते कि दो मित्रों के बीच में कुछ, और वार्तालाप कैसा चल रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं नुक्कड़ पर बैठे हैं और ऐसे ही संध्या के समय कुछ टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, यहां पर कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, और वार्तालाप में ऐसा वार्तालाप चल रहा है कि अर्जुन नाखुश हैं इस पूरे प्रस्ताव से। कौन से प्रस्ताव से, युद्ध लड़ने के पूरे प्रस्ताव से अर्जुन नाखुश। तो सोचो अर्जुन का मूड, यदि आप अपने आप को अर्जुन के मूड में डालो कि प्रथम अध्याय में अर्जुन का मूड क्या था, पूरा नाखुश अर्जुन, और एक एक तर्क वितर्क प्रस्तुत कर रहे हैं और तुरंत अचानक बस आई सरेंडर। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था, अंग्रेजी में कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट। तो वैसे ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हम कृष्ण भक्ति के संपर्क में बहुत कैजुअल तरीके से आ गए होंगे, जैसे अर्जुन बहुत कैजुअल तरीके से भगवान श्री कृष्ण के साथ बचपन से रह रहे थे। लेकिन अर्जुन के जीवन में टर्निंग पॉइंट कहां था, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम। तो वैसे ही हम में से बहुत से हरे कृष्णा के मंदिर में आ रहे होंगे, जा भी रहे होंगे, आएंगे भी जाएंगे भी, कितने ऐसे हम मंदिरों में जाएंगे, संपर्क में आएंगे कोई भी किसी भी आध्यात्मिक पथ के। लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब तक हम उस श्लोक को अपने जीवन में नहीं उतारते, वो इनिशियल सरेंडर जब तक नहीं हमारा प्रारंभ होता, तब तक भगवद गीता हमारे जहन में नहीं उतरेगी। तो ये वो स्थिति है जब अर्जुन शिष्यस्ते हम वो सरेंडर इनिशियल भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और फिर भगवान अपना दृष्टिकोण अर्जुन को देते हैं। कृष्णा गिव्स हिज ओन विजन टू अर्जुन, कृष्णा विजन, दिव्य दृष्टि। और फिर ये है अर्जुन का अंततः समर्पण, करिष्ये वचनम तव। हाँ ये भी बहुत, ये तो सबसे जरूरी है, मतलब ये नहीं कि फिर हाँ चलो मैं शिष्यस्ते हम तो बोल दिया, गुरु भी बना लिया, हम गुरु जी आप रहो आपके संसार में, मैं रहूं अपने संसार में, आप खुश मैं खुश, कोई बीच में ज्यादा आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं आपको प्रॉब्लम नहीं दूंगा। ऐसे भी गुरु को नहीं अपनाना है, या ऐसे भी इस प्रकार की शरणागति अर्जुन नहीं बता रहे। हाँ ये पूरा भगवद गीता श्रवण करने के पश्चात ये होना चाहिए। तो ये हम श्लोक ये चर्चा हम इसलिए लिए क्योंकि वो जो श्लोक परम दृष्ट्वा निवर्तते, जिसकी व्याख्या हमारे आचार्यों ने की है कि भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण वो है परम दृष्ट्वा। तो आज का श्लोक भी एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान फिर इंद्रियों के विषय में बता रहे हैं। इसके पिछले श्लोक में भगवान ने इंद्रियों के विषय में कहा था प्रमाथिनी इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः, कि इतनी प्रमत्त ये इंद्रियां हैं कि ये मन को हर लेती। मतलब वो जो हमने रथ का उदाहरण लिया था कि ये घोड़े इतनी शक्तिशाली हैं कि ये लगाम को तोड़ सकते हैं। सोचिए लगाम को घोड़े तोड़ दें तो फिर जो बेचारा बैठा है रथ के ऊपर उसकी क्या हालत होगी। रथ का एग्जाम्पल हमें इतना उपयुक्त समझ में नहीं आएगा। मान लो कि आप कार में बैठे हो, कार में बैठे हो और स्टीयरिंग व्हील खत्म हो जाए तो फिर क्या वो कार चलाओगे और वो कार आपको कहां ले जाएगी। तो ऐसे ही उस श्लोक के पश्चात अब भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये श्लोक इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक के श्लोकों में भगवान द्वारा जो कहे गए श्लोक हैं उन सभी श्लोकों में ये पहला श्लोक है जिसमें भगवान अर्जुन को साफ साफ बेझिझक अर्जुन को कह रहे हैं मत परायण, मेरी शरणागत और या मेरी परायण हो। बेझिझक भगवान कह रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट श्लोक ऑफ वेरिन कृष्णा इज डायरेक्टली टेलिंग अर्जुन, अर्जुन टेक शेल्टर ऑफ मी। तो इसलिए दूसरे अध्याय में हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान बस शरणागति की बातें या स्वयं के विषय में आगे चलकर गीता में कहेंगे, अभी से शुरू कर दिया भगवान। अगर हम इस पर गौर करें तो भगवान कह रहे हैं तानि सर्वाणि संयम्य, यदि सर्व प्रकार से हे अर्जुन तुम्हें अपने इंद्रियों पर संयम लाना है युक्त आसीत मत पर, सब प्रकार से यदि संयम लाना है तुम, मतलब सब तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना, सब कुछ सर्वस्व तुम्हारा, यदि तुम्हें उस पर निग्रह संयम प्राप्त करना है तो मत पर मेरे परायण। मत का अर्थ है मेरे, भगवान कह, पर का अर्थ है परायण, जस्ट टेक शेल्टर ऑफ मी, मेरे शरणागत हो। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कब से चल रहा है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो भगवान कह रहे हैं यही तरीका है अर्जुन। तो हम यदि पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध देखें तो पिछले श्लोक में उत्तम रस के अभाव का परिणाम बताया गया था। क्या परिणाम था कि ये प्रमत्त इंद्रियां हरन्ति प्रसभम मन, हमारे मन को हर लेती हैं जब ये हमारी इंद्रियां वो वश में नहीं रहती मन के। और आज के श्लोक में हम देखेंगे भगवान बता रहे हैं कि वही इंद्रियां, वही जीव कि वही इंद्रियां कैसे प्रगति के पथ पर वो अग्रसर होते हुए वो अपने परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। तो इसलिए आज हम केवल इसी शीर्षक पर चर्चा करेंगे, जीवात्मा के इंद्रियों का प्रगति पथ। अब देखिए हम बने हुए हैं, पिछले सिटिंग में हमने श्लोक लिया था कोनु राजन इंद्रियवान, याद है वो श्लोक, कि ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन ऐसा इंद्रियवान, इंद्रियवान अर्थात हम मनुष्य, कौन ऐसा इंद्रियवान मनुष्य वो नहीं होगा जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत नहीं होगा। तो हम जो इंद्रियों से बने हुए, भगवान जो ऐश्वर्यों से बने हुए, इसलिए वो भगवान, हम इंद्रियों से बने हुए, हम इंद्रियवान। तो अब ये इंद्रियां तो हमें मिल चुकी हैं, हम जैसे ही पैदा हुए, आंखें, ये नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये पूरा शरीर, और शरीर में इतनी सारी इंद्रियां, तो ये सारी जो इंद्रियां प्रकृति ने हमें उपलब्ध करा कर दी हैं। बचपन पैदा होते ही हम कैसे इन इंद्रियों के कार्यों में लगना शुरू हुए हमें भी नहीं पता है कि नहीं। छोटे बच्चे हम सब जो एक समय थे, पैदा होते ही सब चालू हो गया, आंखें देखना, सुनना, सूंघना, खाना, चखना, ये सब कुछ चालू हो गया, इंद्रियां तुरंत एक्टिव, तब से लेके वो तो गर्भ के अंदर ही इंद्रियां चालू हो जाती है हमारी, अब तक चल रही हैं। देखिए कितनी, कितना ये इंद्रियों ने काम कर लिया है बचपन से लेके अब तक, कितने ये आंखों ने कितना कुछ नहीं देखा होगा, ये कानों ने कितना कुछ नहीं सुना होगा बचपन से लेके अब तक, ये एक जीवन का बता रहे हैं, ये जिह्वा ने कितना कुछ नहीं खाया होगा, ये हमारे नाक ने कितना कुछ नहीं सूंघा होगा, क्या कुछ हमने नहीं किया, और फिर भी ये इंद्रियां अभी भी उतना ही एक्टिव है। जैसे ही विषय वस्तु सामने, ये इंद्रियां वैसे ही उतने ही एक्टिव, जैसे कि पहली बार अब ये इंद्रियां कोई कार्य में लगने वाली है ना। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि बिना इंद्रियों के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए प्रगति पथ ये बताया गया है कि हम आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे कि हमारी दुर्गति कैसे हुई, पहले इंद्रियों की वजह से, इंद्रियों की वजह से दुर्गति कैसे हुई, और इंद्रियों के ही वजह से आज जो भगवान का श्लोक है, प्रगति के पथ पर हम कैसे आ सकते हैं। तो छह लक्षण हमारे इंद्रियों के प्रगति पथ के, छह लक्षण, इस पर आज की चर्चा होगी। जीव की पतन दशा, ये पहला लक्षण, जीव के इंद्रिय भोग का कार्यक्रम। हम सब का इंडिविजुअल हमने कार्यक्रम सब बनाकर आए, और ये नहीं कि केवल एक ही जन्म, एक ही योनि में, कितनी योनियों में हमारा अलग अलग कार्यक्रम होता था, जैसे टीवी पे होते ना अलग अलग कार्यक्रम, एक ही चैनल में कितने कार्यक्रम होते हैं, तो वैसे एक ही योनि में हरेक जीव के अपने पर्सनल, प्राइवेट, व्यक्तिगत कार्यक्रम होते हैं। किसके? इंद्रिय भोग के। साक्षात्कार की शुरुआत कब से होती है फिर, ये सब आप ध्यान में रखिए कि एक एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। जैसे सीढ़ी होती है ना, सबसे जो निचला उसका स्टेप होता है, तो वहां से पतन दशा से शुरू हुई है, फिर हमारा कार्यक्रम हमने क्या मनाया यहां पर आके, फिर साक्षात्कार की शुरुआत कब से कैसे, इंद्रिय भोग के विषय में भगवान का मत क्या है हमारे कार्यक्रम के बारे में, ये बहुत जरूरी है कि स्पेशल कंसल्टेंट जो कि हमारे इंद्रियों के विषय में और हमारे इंद्रिय भोग के कार्यक्रम के विषय में, उनका मत क्या है जानना बहुत जरूरी है। फिर क्या कोई समाधान की प्रक्रिया है, क्यों नहीं, और अंततः इंद्रिय भोग की शुद्ध अवस्था। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? पतन दशा। फाइनल स्टेप कौन सा है? शुद्ध अवस्था। कैसी लगी जर्नी? शुरू करें? सीट बेल्ट बांध लिया? तो जीव की पतन दशा इस श्लोक में वर्णित है। हम सब प्रसिद्ध श्लोक लेने वाले हैं, सब हम जो श्लोक बहुत बार बोल चुके हैं, सुन चुके हैं, दूसरों को भी सुना चुके हैं, सब प्रसिद्ध श्लोक हम लेने वाले हैं। लेकिन खाली वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, जो सीक्वेंस अभी हमने देखा। तो जीव की पतन दशा भगवान भगवद गीता के इस श्लोक में कहते हैं, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति कर्षति। कर्षति का अर्थ है कर्षण, अर्थात स्ट्रगल। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं, दो चीजें बता रहे हैं श्लोक में। एक तो जीव जो कि सनातन है, आध्यात्मिक संसार का निवासी, हम सब कौन से आध्यात्मिक संसार के हम निवासी, सनातन जीव। और कैसे हम सनातन हुए हैं, क्या कौन सी वस्तु ने हमें सनातन बनाया है, भगवान कहते हैं ममैव अंश, कि मेरे अंश होने के वजह से, भगवान के हम अंश होने के वजह से हम सनातन हैं। जैसे कि कोई यदि बहुत धनवान परिवार में पैदा होता है, कोई बिरला परिवार में पैदा हुआ है या अंबानी परिवार में पैदा हुआ है, तो केवल वो पैदा हुआ है तो वो भी मालिक हो गया ना। क्या क्या उसने, उसने उस अंबानी परिवार में न तो कोई कंपनी खोली, न उसने कोई व्यापार को बढ़ाया, किया क्या, खाली पैदा हुआ है ना। खाली पैदा हुआ, थोड़ा खर्चा और बढ़ा दिया उसका परिवार का, लेकिन उसके साथ साथ नाम उसका रजिस्टर हो गया, अंबानी खानदान, जो भी खानदान का ये इनहेरिटर है कि नहीं। तो हम ये सनातन क्या हमारे बलबूते पे बने? भगवान का अंश, और भगवान बोल रहे हैं। अब देखिए, मान लो कि मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाना चाहता हूं, दिल थाम के सुनेगा, मैं मुकेश अंबानी का लड़का हूं। देखो हंस रहे हैं आप लोग, तो आप लोग का हंसी, आप लोगों की हंसी कब बंद होगी, जब मैं मुकेश अंबानी को लाऊंगा और वो कहेगा हां ये मेरा लड़का है कि नहीं, फिर सबकी हंसी बंद हो जाएगी। तो जब हम बोलें कि मैं कृष्ण का अंश हूं, तो सभी लोग हंसेंगे, ये कृष्ण का अंश है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, सर्टिफाई कौन कर रहा है, भगवान बोल रहे हैं, हम जैसे पतित तुच्छ बद्ध जीवों, चाहे वो कोई कॉकरोच की योनि में भी क्यों ना हो, उसके लिए भी ये श्लोक है। ये मत समझना कि केवल हम जो मनुष्य हैं या जो भारतीय हैं या जो आज इस कमरे में बैठे हैं उनके लिए भगवान ये श्लोक बता रहे हैं। नहीं, इस कमरे में अगर कोई चिलचट्टा भी घूम रहा है या कोई छिपकली भी घूम रही है, कोई चींटी भी घूम रही, उसके लिए भी भगवान बोल रहे हैं कि वो भी मेरा अंश है। तो देखिए, सर्टिफाई कौन कर रहा है। तो इस श्लोक में अब हमको लग रहा है, पहली लाइन सुन के बहुत अच्छा लगता है हमको, ये इस श्लोक की पहली लाइन देखो, क्या कॉलर ऊपर करते हैं पहली लाइन सुन के, आगे बाकी तीन लाइन भी है, ध्यान से सुनिए, बाकी तीन लाइन सारी कॉलर भी निकाल देती है अपना। तो हां, भगवान कह रहे हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं और वो सनातन है मेरी तरह, क्योंकि भगवान भी सनातन है, Just like Krishna is eternal, Krishna is certifying that all my part and parcels are also eternal. मतलब मुकेश अंबानी ये कह रहा है कि मेरी तरह ये मेरा अंश भी करोड़पति है. आगे चले. मन षष्ठानी इंद्रियाणी. और इसके पास है क्या? इसका एक मन और पांच इंद्रियां. कितना हो गया? छह. षष्ठानी, सिक्स सेंसेस इंक्लूडिंग द माइंड. तो हमको लग रहा होगा वाह, मतलब पर्सनली मुझे भी कुछ दिया है भगवान ने. लेकिन हम उसका कर क्या रहे हैं इस भौतिक संसार में? प्रकृति स्थानी कर्षती. हम इस भौतिक संसार में जन्मे, उसके वजह से हमें ये भौतिक मन और ये पांच इंद्रियां दी गई. जैसे जेल में कैदी को दिया जाता है उसका यूनिफॉर्म, उसकी वर्दी, और उसके बाद प्रकृति स्थानी कर्षती. हमारा कर्षण, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा है. शुरुआत कहां से हुई? ये मन और ये इंद्रियां, इसलिए ये श्लोक लिया है. तो हमारी इंद्रियों की पतन दशा शुरू कब हुई? जब प्रकृति में हमने ये मन और ये इंद्रियों को चाहा प्राप्त कर. ये हमारी इच्छा थी कि मुझे वो आध्यात्मिक मन और इंद्रियां नहीं चाहिए. वहां पर भी थी हमारे आध्यात्मिक इंद्रियां और मन, लेकिन हमें यहां का फ्लेवर चाहिए था. मुझे नासिक का मन और इंद्रियां चाहिए, यहां का क्या फ्लेवर? तो यहां के साथ क्या मिला है? कर्षण, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. अब जीव के इंद्रिय भोग का कार्यक्रम, सेकंड लेवल क्या था हमारा? ठीक है, हमको मिल गया. क्या मिल गया? ये मन और हमारी पांच इंद्रियां मिल गई. तो अब हमने क्या कार्यक्रम सेट किया अपने आप के लिए? ये देखिए. यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगमन भवेत. ये है चार्वाक मुनि. चार्वाक मुनि इन्होंने कहा कि ये उद्देश्य है, ये है हर बद्ध जीव के इंद्रिय भोग का कार्यक्रम. कि जब तक जियो, कब तक जियोगे कुछ पता नहीं है, कि नहीं कुछ पता नहीं कब तक जियोगे. क्षण भंगुर है ये जीवन. ये समुद्र के उन बुलबुलों के समान है. कब ये बनते हैं, कब ये बिखरते हैं, कब ये फूटते हैं, क्या समझ में आता? तो जब तक आप बुलबुले के रूप में हो, सुखम जीवित, सुखम जीवित, ऐश करो, मौज करो. और कैसे? घी, घी में पका हुआ सब कुछ खाओ. अभी क्योंकि देखिए चार्वाक मुनि, हो सकता है उनको घी बहुत पसंद हो. आजकल बहुत से लोगों को घी की वो गंध ही पसंद नहीं आती. कलयुग का ये हाल है. तो कलयुग के कोई चार्वाक मुनि होंगे तो वो दूसरा कुछ बोलेंगे कि कांदा भजी खाओ. यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा कांदा भजी खावे. भस्मीभूतस्य देहस्य, कोई पूछे कि भाई यार तुम घी को खाने की बात बोल रहे हो, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ रही है आजकल, कौन घी अफोर्ड कर सकता है? अरे चोरी करो, डाका डालो, भीख मांगो, ये न के न प्रकारेण, घी लाओ और घी में पका के खाओ. अरे चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, ये वो, तो उसके लिए तो फिर है ना वो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, नर्क जाना पड़ेगा, ये दूसरी योनि मिलेगी, ये होगा वो होगा. कौन बोलता है तुमको नर्क जाना पड़े, कौन, हाँ है नर्क। कुतः पुनः आगमन भवे। तो देखिए ये जो फिलॉसफी है, सो कॉल्ड फिलॉसफी या फिलॉसफी, जिसके अंदर ये कहते हैं कि अभी भोगते रहो, आगे चलकर, आगे की बिल्कुल सोचने का नहीं। और चाणक्य पंडित वो कहते थे कि इंद्रिय भोग का जब भी विचार आए तो समझो कि इतना नित्य जीवन पड़ा है, कभी भी इंद्रिय भोग कर सकता हूं, है कि नहीं। और आत्म साक्षात्कार का विचार आए तो सोचना चाहिए अभी पता नहीं कल जीऊंगा कि नहीं, अभी आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहिए। तो आजकल का विचार क्या है, बिल्कुल उल्टा चाणक्य पंडित के, कि लोगों को आप जाकर बताओ कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। अच्छा, तो मैं आत्मा हूं तो मतलब मैं तो अमर हूं ना। हाँ, आप अमर हो तो फिर जल्दी क्या है, मैं तो कभी भी कर सकता हूं ना फिर आपकी भक्ति, अभी क्यों आप ये मेरे पीछे आए हो। जैसे हमारे पूना के टेंपल प्रेसिडेंट राधेश्याम प्रभु, वो बता रहे थे एक बार कि वो जब ब्रह्मचारी बने तो अपने घर वालों को जाके उन्होंने धीरे धीरे प्रचार करना शुरू किया, तो थोड़ा वो फिलॉसफी समझने लगे। तो उनकी कुछ बहनें, उनकी सिस्टर, उनसे कहीं कि देखो आपके फिलॉसफी के अनुसार आप अमर हो, आप एटर्नल हो ना। हाँ, उन्होंने कहा हाँ, तो आप अगले जन्म में भी तो ब्रह्मचारी बन सकते हो। ये इसी जन्म में क्यों बनना है। तो उन्होंने भी अच्छा आंसर दिया, उन्होंने बोला पिछले जन्म में भी मैंने यही कहा था मेरे पिछले सिस्टर्स को। तो उसी फिलॉसफी को लेके ये कहते हैं कि अरे भाई अभी जो आपको भगवान ने इंद्रियां दी है, इतनी सशक्त इंद्रियां दी हैं, किस लिए दी भोग कर। और ऐसा नहीं कि खाली इंद्रियां दी, इंद्रियों के साथ उनके विषय वस्तु भी दिए है कि नहीं, और फिर उसके साथ इच्छा भी तो दी है। तो ये सब इंडिकेशन क्या है, अब और क्या कि भगवान सेमिनार दें। तो हमने अपना ये सब देखते हुए कार्यक्रम ये बना रखा है। तो ये पतन दशा के बाद, यहां पर आने के बाद ये तुरंत हमने कार्यक्रम बनाया। इसे कार्यक्रम कैसा होता है कि मान लीजिए जैसे दिवाली का समय अभी आ रहा है, तो दिवाली के समय लोग घर साफ करते हैं ना, तो किचन वगैरह में से सब पानी मार मार के साल में एक बार सब निकाला बाहर, तो देखा चीटियों ने पूरा अपना डेरा लगा रखा है, उनका पूरा बटालियन और कैंप वैम्प लगा हुआ है पूरे साल भर से अंदर, है ना। तो जो चीटियां हैं वो साल भर उन्होंने जो भी कुछ कार्यक्रम बनाया तो उनके अनुसार, चाहे वो पूरा मकान आपके नाम पे हो, सात बार आपके नाम पे होगा, पूरे खानदान के नाम पे होगा, आपके पुरखों का मकान होगा, लेकिन ये चीटियां उन्होंने क्या कार्यक्रम बना लिया, ये लोग कौन से भ्रम में रह रहे हैं यहां पे। तो ऐसे ही हम लोग इस भौतिक संसार में आके वो चीटियों की तरह हम अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। कहां खड़ा करते हैं, एक इधर किचन के कोने में वो जहां पे थोड़ी सी चीनी गिरी हुई है वहां पे अपना पूरा साम्राज्य खड़ा करके रखा है कि हाँ सब चीटियां उसके बीच में। अच्छा, तो तुम्हारा ये प्लॉट होगा, ये प्लॉट होगा तुम्हारा, वो मोरी के उधर होगा, मेरा मोरी के इधर होगा, उधर उनका पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। और फिर दिवाली के समय होता क्या है, दिवाली के समय वो बाल्टियां भर भर के पानी डाल रहे, मतलब प्रलय। तो वैसे जितने हमने उनके लिए तो प्रलय हो गया ना, वो फिर अचानक अरे प्रलय कैसे हुआ, नहीं ये शास्त्र में बताया गया है कि साल में एक बार ऐसा प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो प्रलय होता है। कोई नहीं कोई नहीं, ये सब जब पानी वानी तो साफ कर देंगे, लोग हमारे लिए कर रहे हैं लोग साफ। तो ऐसे ही जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो प्रलय होता है, फिर ब्रह्मा जी की 100 वर्ष पूरे होते तो महाप्रलय होता है। प्रलय है क्या? बस बाल्टी भर भर के पानी, और खाली अंतर इतना ही है कि भगवान की बाल्टी बहुत बड़ी है। तो अब एक और उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है, हमारे भगवत गीता में दिया गया है, ये है मधुमक्खी। मधुमक्खी का उदाहरण दिया गया है कि ये जो मधुमक्खी है ये कितना जतन करती है वो शहद को इकट्ठा करने का। आपको पता है एक चम्मच शहद हम लोग कितना गटगट पी जाते हैं, शहद कितना अच्छा लगता है, एक और डालो चम्मच। तो एक चम्मच शहद, 1 टीस्पून ऑफ हनी, ये इस मधुमक्खी को 90,000 फ्लावर्स में से वो चुग चुग के लाना पड़ता है हनी, 90,000 फूलों में से उसमें से एक चम्मच वो निकलता है। तो देखिए अब उसके लिए ये उसका इंद्रिय भोग है। तो अब इस भौतिक संसार में हम देखें जैसे 11वें स्कंद में अवधूत ब्राह्मण की कथा है श्रीमद् भागवत के, और अवधूत ब्राह्मण एक मधुमक्खी की ये क्रिया को देखकर वो समझ जा रहे हैं, उसको मधुमक्खी को गुरु बना लिया उन्होंने। देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि गुरु कोई ऐसा होना चाहिए जो बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, फिर 4-5 हाथ हो, ऐसे कोई गुरु होना चाहिए। यहां पे अवधूत ब्राह्मण एक मधुमक्खी को गुरु बनाए। आज हम ड्रेसिंग करते समय राधानाथ महाराज का एक प्रवचन सुन रहे थे जिसमें यही उदाहरण पर वो प्रवचन दे रहे थे, और वो बोल रहे थे इफ ओनली द एंटायर वर्ल्ड लर्न्स लेसन फ्रॉम अ हनी बी द एंटायर वर्ल्ड कैन बी एट पीस। कैसे? तो लेसन ये अवधूत ब्राह्मण ने सीखा इस मधुमक्खी से कि मधुमक्खी इतना जतन कर वो शहद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार से बद्ध जीव इतना जतन कर पैसा इकट्ठा करता है जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है। इसलिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मनी इज स्वीटर देन हनी, कि पैसा शहद से भी ज्यादा मीठा है। क्यों? क्योंकि शहद जो है, दो कारण है इसके, शहद जो है वो खाली आपकी जीवा को आस्वादन दे सकता है ना। शहद को छुओ एकदम चिपचिप चिपचिप हो जाए, हाथ धोना पड़ता है, लेकिन वही शहद जब जीवा पे डालो तो जीवा को नहीं धोते ऐसे टंग क्लीनर से, अरे कहां गिर गया शहद, उसको पूरा एकदम आस्वादन करके है ना? है वही त्वचा हमारी और वही शहद, लेकिन यहां पर लग जाए तुरंत हाथ धोते हैं, यहां पर लग जाए तो उसका आस्वादन करते हैं। तो कहा गया है कि शहद आपकी बाकी किसी इंद्रियों को आनंद नहीं दे सकता, खाली जीवा को छोड़कर, लेकिन पैसा वो आपकी सारी इंद्रियों को आनंद देने के लिए पैदा किया गया है। पैसा अगर आ जाए तो आंखों के लिए जो विषय वस्तु है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, आपके जिह्वा के लिए जितनी विषय वस्तु है वो प्राप्त कर सकते हैं, आपके कानों के लिए, आपके नाक के लिए, आपकी त्वचा के लिए सब। इसलिए मनी स्वीटर देन हनी। और दूसरा कारण बताया गया कि जो शहद है वो जब तक आप उसे अपनी जिह्वा पर नहीं डालोगे तब तक आपको उसका आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। केवल शहद की बोतल सामने रख दिया आपने, उसको देखकर कितना मीठा लग रहा है, अरे वो चाशनी भी हो सकती है, पता है चाशनी, लेकिन उसको देखने से आपको कोई उतना संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन पैसा ऐसी चीज है कि सामने दिखे भी नहीं, खाली कुछ नंबर पासबुक में है ना, सामने है ही नहीं लेकिन पासबुक में जीरो बढ़ रहा है, कितना मजा, अरे एक और जीरो बढ़ गया, एक और जीरो बढ़ गया। ये समझ में नहीं आ रहा कि सारे जीरो ही हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सारे जीरो को एक साथ करो। तो वो जस्ट मेडिटेटिंग ऑन दैट मनी गिव्स सो मच सेटिस्फैक्शन टू द कंडीशन माइंड। तो ये महाराज वो प्रवचन में कह रहे थे, कंडीशन लिविंग एंटिटी जस्ट लाइक दिस हनी बी इज वर्किंग हार्ड टू जस्ट एक्यूमुलेट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर हनी मनी। तो ये है हनी बी और हम कौन है मनी बी। इसका वो छोटा सा कहीं पेड़ पे छत्ता होगा और हमारे छत्ते कहां कहां नहीं है, ब्रांचेस इस बैंक में, उस बैंक में, HSBC, सिटी बैंक, ये वो कहां कहां छत्ते खोल रखे हैं। और जैसे कि ये मधुमक्खी को एक चम्मच शहद इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 90,000 फूलों, तो वैसे ही वो एक जीरो बढ़ाने के लिए ये मनी बी को कितना जतन करना पड़ता है, ओवर टाइम, फिर बाद में यहां पर इन्वेस्टमेंट, वहां स्टॉक में डाल दिया, इधर शेयर में डाल दिया, वो बिजनेस चालू कर दिया, फिर उससे यहां से लोन ले लिया, फिर उसको उधर दगा दे दिया, अलग अलग तरीके से, बस ये न के न प्रकार है ना, वो बस वो छत्ते में भरता रहे भरता। और कई ऐसे हैं कि उसमें से कभी, जैसे हनी भी भरते रहते ये कुछ नहीं खाते उसमें से, खाता कोई और है, हम आएंगे उससे भी, वैसे ही भर रहे हैं अकाउंट में, भरे जा रहे हैं और बाद में एक हार्ट अटैक, खत्म, पैसा और किसी के पास, या तो उससे पहले कोई बैंक लूट के चला गया, बैंक वाले अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं, गया तुम्हारा पैसा सारा, तो वो लोग हार्ट अटैक दे देते हैं फिर। तो ये जो इंद्रिय भोग का कार्यक्रम, ये 11वें स्कंद में बताया गया है कि इस मधुमक्खी, अब कितना अच्छा लगता है ना, मधुमक्खी, केवल मक्खी नहीं, क्या कौन सी, मधु को इकट्ठा करने वाली मक्खी। तब फिर साक्षात्कार हमारा शुरू होता है, जब हम ये सीखना प्रारंभ करते हैं कि ये जो मैं इतना जतन कर रहा हूं। अब ये श्लोक एक बहुत ही विशेष श्लोक मैंने श्रीमद् भागवत में पाया, ये 6वें स्कंद में ये श्लोक कहा गया है दक्ष प्रजापति द्वारा नारद मुनि को। अब दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बना दिया, एक ब्रह्मचारी क्लास दिया, और सोचिए 10,000 दक्ष प्रजापति के पुत्र लॉक स्टॉक बैरल ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया। तो दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित अब नारद मुनि को श्लोक कहते हैं नानु भूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णताम निर्विद्यते स्वयं तस्मान न तथा भिन्न दीप पर। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि हां मैं समझता हूं, मैं जानता भी हूं कि इंद्रिय भोग जो है वो बद्ध जीव को बाधित करता है, मैं जानता हूं। तुमने जो इनको वैराग्य के पथ पर लगाया है नारद, वो सही है, मैं जानता हूं, लेकिन उस वैराग्य के पथ पर क्या ये टिक पाएंगे, ये मेरा संशय है. विल दे बी एबल टू मेंटेन देयर रेनन्सिएशन. तो नारद मुनि पूछे तो हाउ विल दे मेंटेन, आप बताओ. तो इस श्लोक में वो कहते हैं कि जब तक जीव उस इंद्रिय भोग में नहीं लगता तब तक उसे साक्षात्कार नहीं होता कि वो इंद्रिय भोग ही उसके बंधन का कारण है. कितना अच्छा लग रहा है फिलॉसफी. एक तरीके से वो सही कह रहे हैं कि सबसे पक्का, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, श्रील प्रभुपाद उदाहरण ये दिया करते थे कि बच्चा जो है वो अग्नि को देखता है तो बहुत अग्नि की लपटें बहुत आकर्षित करती है बच्चे को, कितनी अच्छी लगती ना ऐसे नाचती हुई अग्नि की लपटें, डांसिंग फ्लेम्स ऑफ फायर. तो टच करने की कोशिश करता है. पिताजी बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं लेकिन मेरे को इच्छा हो रही. नहीं बोला, नहीं इच्छा हो रही, नहीं बोला, इच्छा हो रही, चल डाला. फिर बाद अब पिताजी बोलते हैं अब नहीं, दूरदर्शन, दूर से दर्शन लेंगे, बस इधर से हाथ से के. तो ये दक्ष प्रजापति कह रहे हैं अनलेस वन एंगेजेस इन दैट सेंस ग्रेटिफिकेशन, वंस रियलाइजेशन अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ दैट सेंस ग्रेटिफिकेशन विल नॉट बी दैट स्ट्रांग as against the person who has not engaged in that sense gratification. जैसे श्रील प्रभुपाद को पूछा गया था, प्रभुपाद को पूछा, so Swamiji, have you tested LSD drugs? प्रभुपाद ने कहा no. So how do you know it is bad? How do you know it is bad? तो प्रभुपाद ने बहुत सरलता से उसका उदाहरण उत्तर दिया, माय डिसाइपल्स हैव टेस्टेड एंड दे हैव गिवन अप. तो प्रभुपाद ये बोल रहे थे कि केवल श्रवण करने से, जैसे मैं हाल ही में जब क्रूज पे था तो ये इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया, सी यू हैव नॉट टेस्टेड लिकर, मतलब वो चर्चा कर रहे, पूछा आपने कभी बियर भी नहीं पिया, मैंने कहा नहीं, कभी विस्की भी नहीं पी, नहीं, कभी वाइन भी नहीं पिया, नहीं, वो सब याद कर, मैंने कुछ भी नहीं पिया, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं. बोले गुटखा भी नहीं, गुटखा भी, पान पराग भी नहीं, पान पान भी नहीं, पान भी नहीं. तो फिर बोले कि आपको फिर क्या, कैसे समझेगा कि वो चीज अच्छी है बुरी है. तो मैंने थोड़ा बहुत रेडिकल उदाहरण दिया उनको, मैंने कहा आप बताइए स्टूल का टेस्ट कैसा है, अच्छा है बुरा है. महेश के क्या वाहियात बातें कर रहे हैं. बोला अच्छा शुरू किसने किया था. तो स्टूल का टेस्ट जानने के लिए जरूरत नहीं. अच्छा हम लोग तो तुरंत वो सुन के हमको तो कह रहे हैं, कच 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 कर रहे हैं हम लोग सब. अब सुअर को पूछो, सुअर बोले ये लोग तो पागल हैं, साले मालूम ही नहीं है कि असली मजा कहाँ है. तो सुअर के समुदाय में वो लोग तो हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, सारे सुबह लोटा लेके जाते हैं ऐसे ही आ जाते हैं बिना. उनको मालूम ही नहीं असली खजाना किधर है. तो अब यहां पर दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि जब तक कि वो कहते हैं न अनुभूय, जब तक कि वो अनुभव नहीं करता, न जानाति, तब तक वो जानेगा नहीं। क्या पुमान विषय तीक्ष्णता, कि ये जो विषय और इंद्रिय, इनका जो संपर्क जो इतना तीक्ष्ण है, वो नहीं उसका साक्षात्कार होगा। निर्विद्यते स्वयं तस्मान, स्वयं उसको उसका साक्षात्कार हो जाएगा। न तथा भिन्न दी परे, और किसी व्यक्ति से सुनने की भी जरूरत नहीं है फिर उसको, उसको स्वयं ये साक्षात्कार हो जाएगा। व्हाट इज द फ्यूटिलिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन वंस ही एंगेजेस, ये भागवत का श्लोक है। बहुत से लोगों ने श्लोक के ऊपर फिलॉसफी बना दी कि जब तक आप उस इंद्रिय भोग में नहीं लगेंगे, तब तक आप उस इंद्रिय भोग को उतनी दृढ़ता से नहीं छोड़ पाएंगे। हां, कोई कृत्रिम तरीके से छोड़ देगा, लेकिन फिर भी उसके मन में वो इच्छा बनी रहेगी। तो यहां पर हम एक ये सिद्धांत समझ सकते हैं। इस श्लोक को जब मैं आज पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक ऐसी बात आई कि देखिए, हमारा जो शरीर है जो कि इंद्रियों से बना हुआ है, और कितने सारे अलग अलग पुर्जे हैं इस शरीर के अंदर। अब हम इंद्रियों को लें, हमारे विभिन्न अंगों को लें, और उन अंगों और इंद्रियों के साथ जो इंद्रिय भोग हम करते हैं उसको लें। जैसे मान लीजिए कि हमें भूख लगती है रोज, तो भूख लगती है किसके वजह से? क्योंकि अन्न नहीं गया अंदर, है ना, कुछ खाना नहीं गया, खाली है, इसलिए भूख लग रही है। तो अब खाना, हमारे मन में एक विचार आता है कि हाँ चलो, जैसे अभी इस बार इस समय विचार आ रहा होगा आपके, क्या क्या बनाया मेनू में, पिछले बुधवार को ये था, उसके पहले ये था, क्लास चल रही है हमारा, सब कौन सा मेनू हो गया इस महीने के बुधवार को, सब तो इस बार आलू मटर हो सकता है, ये हो, जो भी। तो हमारे मन में वो खाने के विषय में चिंतन करने से वो भूख और बढ़ती है, और सामने आ जाए तो और बढ़ जाएगी। यदि वो कुछ पक रहा है, उसकी सुगंध आने, तो धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यायतो विषयान पुंसाम, इसके बाद वाला श्लोक है वो। तो अब खाना सामने आ जाए, हाँ, तो जो हमें इतनी लालसा उस खाने के प्रति जो हुई, अब उसी खाने के प्रति हमारा वैराग्य कहां से उत्पन्न होगा? उसी खाने में छिपा हुआ है वैराग्य, उसी खाने में आकर्षण छिपा हुआ है, और उसी खाने में वैराग्य भी छिपा हुआ है। ये थोड़ा गहरा मुद्दा है, समझा? द सेम फूड हैज अट्रैक्शन हिडन इन इट, एंड रेनन्सिएशन फॉर दैट फूड इज ऑल्सो विद इन दैट फूड। उसको आप एक घास खाओ, दो, तीन, जितना और खाओगे उतना उससे वैराग्य आपका बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कम से कम उस समय के लिए। तो वैसे ही हमारी ये इंद्रियां, शरीर भी वैसे ही बना हुआ है। अब देखिए हमारा हृदय लीजिए, ये जो हृदय है, हम लोग अभी सांस किसके वजह से ले पा रहे हैं? ये हृदय अंदर है ना, उसके वजह से सांस ले पा रहे हैं। सांस ले रहे हैं मतलब जिए, जी रहे हैं, जीवित हैं। और जब यही हृदय का दौरा पड़ता है तो यही हृदय हमारे मृत्यु का भी कारण बन जाएगा। अभी हमारे जीवन का कारण ये हृदय बना हुआ है, यही हृदय हमारे मृत्यु का भी कारण बन जाएगा। यही किडनी, यही लिवर जो हमें अभी जिला रहा है, यही किडनी लिवर मृत्यु का भी कारण बन सकती है ना डॉक्टर साहब। तो उसी प्रकार से वही इंद्रिय भोग में, इस श्लोक को यदि हम उस प्रकार से समझें तो वही इंद्रिय भोग में आकर्षण भी छिपा है और वैराग्य भी छिपा है, केवल हमें हमारा दृष्टिकोण उस हिसाब से बनाना है। तो इसलिए बहुत ये पावरफुल श्लोक है अगर इसे हमें सही तरीके से समझे तो, नहीं तो लोग तो इसको पूरा उल्टा तरीके से, अरे देखो जब तक मैं नहीं लगूंगा तब तक। जैसे बहुत से जब हमारे इस्कॉन में कुछ ब्रह्मचारी ज्वाइन होते हैं तो वो लोग उनके बड़े बुजुर्ग आके कहते हैं कि अरे इसको कैसे, जैसे दक्ष प्रजापति भी वही बोल रहे कि इसको कैसे समझ में आएगा कि क्या असली वैराग्य, जब तक कि वो उस इंद्रिय भोग को पूर्ण रूपेण भोग कर उसका तिरस्कार नहीं करता। तो हम पूछते हैं तो आपने कर दिया, आप तो बड़े हो गए ना, तो आपने तो भोग लिया ना पूरा, हाँ तो आप आइए। नहीं नहीं ये अच्छा है, नाम रोशन करेगा। तो साक्षात्कार की शुरुआत कहां से हुई है श्लोक के अनुसार, इंद्रिय जब कार्यक्रम बनाकर उस इंद्रिय भोग में जीव लगा वहां से। तो अब देखिए फिर से हम उस उदाहरण को ले रहे, मधुमक्खी। तो अब मधुमक्खी ने जो छत्ता बनाया, और ऐसा छत्ता होता है इनका कि उसके अंदर एकदम सब पूरा कॉलोनी है, बी कॉलोनी बोलते हैं उसको, कॉलोनी है, डिपार्टमेंट है, अलग अलग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो उसका क्वीन है, क्वीन बी है, फिर वर्कर बी, फिर उनका सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन है ना, मैनेजमेंट सब कुछ है अंदर, डिफेंस भी है, डंक मारती कोई भी अटैक करने जाए, सब डिपार्टमेंट है। तो तीसरे स्कंद में, श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में बताया गया है कि ये जो मधुमक्खियां छत्ते में, आप दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि कितना एक साथ है ना घूम 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 कीर्तन कर रहे हैं, है ना, कैसी आवाज आती है छत्ते से, जैसे सुबह हमारी जपा की आवाज आती ना, सुबह आप आए कभी 6 बजे, जैसे मधुमक्खी की छत्ते की आवाज होती ना वैसी आवाज आती, अरे हरे कृष्ण, तो किसी का हरे कृष्ण से वॉल्यूम बढ़ा दे, फिर दूसरे लाइन तक और दूसरी दुनिया में पहुंच गए। तो सुबह सुबह अलग अलग वॉल्यूम में, अलग अलग टोन्स में आपको महामंत्र सुनाई देगा, सुबह 6 बजे से आप पाएंगे तो कई हैं जिनका खाली आपको राम 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 उतना ही सुनाई देता है। हाँ, कई बार मैं देखता हूं कि अरे बाकी कहां गया, ऐसे राम 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 राम, अरे युग धर्म तो और कुछ है। एक बॉम्बे में हमारे वो भक्त, पता नहीं वो इस प्रकार से महामंत्र वो जप करते थे सुबह की, खाली वो सिट्टी सुनाई देती थी बीच में, क्या होता है ऐसे ऐसे, मैं सिट्टी कौन मार रहा है, उस केवल सिट्टी सुनाई दे रही है। तो फिर से इस उदाहरण पे आ जाते हैं हम, तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, दूर से देखो तो लग रहा है कि संकीर्तन चल रहा है, कितना घुल मिल के सब लोग रह रहे हैं छत्ते में, कितना प्रेम है। लेकिन तीसरे स्कंद में बताया गया है कि ये मधुमक्खी जो छत्ते में आपको ये दिखाई दे रही है, ये हर पल एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी को डंक मारती रहती है, यहां पे कोई प्रेम का आदान प्रदान नहीं चल रहा है, ईच हनी बी इज स्टिंगिंग द अदर वन, और दूसरी जो मधुमक्खी है वो उसको बर्दाश्त करते हुए वो भी दूसरे को वो डंक मारते हुए वहां पर है। ये भौतिक संसार, कि दूर से लग रहा है कि हाँ देखो कितना अच्छा मनुष्य समाज है, देखो कितना पार्टी वार्टी करते हैं लोग, कितने सोसाइटी बना रखे हैं, कितने क्लब बना रखे हैं, कितने समाज हैं, परिवार हैं। लेकिन जब उस सोसाइटी और परिवार के अंदर जाओ तो एक इसको डंक मार रहा है, वो उसको डंक मार रहा है। दूर से लगता है कितना अच्छा छत्ता है, देखो कितना कीर्तन अच्छा चल रहा है, लेकिन सब डंक मार रहे हैं दूसरे। ये तीसरे स्कंद में उदाहरण दिया गया। तो तीक्ष्णम, ये हालांकि ये छत्ता भरा हुआ किससे है? शहद से। लेकिन उस शहद का आस्वादन करने के लिए उन सभी मधुमक्खियों को एक दूसरे का डंक खाना पड़ता है। ये है परिणाम जो हमने कार्यक्रम अपने लिए बनाया था ना, मनश्ष्ठानी इंद्रियाणी कर्षति, ये कर्षति। और इतना ही नहीं, फिर भगवान का मत, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? भगवान का मत। भगवान का मत क्या है? यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आदि अंत कौंतेय। इसका आदि और इसका अंत क्या है? दुख योनि। न तेषु रमते बुधः, जो बुद्धिमान है वो कभी इसमें रमण नहीं करता, वो जान लेता है इस छत्ते से दूर रहो। कुछ नहीं रखा मतलब, अब मैं आपको बताता हूं इस प्रकार से कि मधुमक्खियों ने इतनी मेहनत करके, इतने महीने साल मेहनत कर इतना शहद इकट्ठा किया, और वो कौन है? उसे कहते हैं मधुहा। वो आकर वो सारे मधुमक्खियों को दूर भगाकर, वो ना धुआं लगा के दूर भगा देते हैं, ये थोड़ा हाईटेक तरीके से कर रहा है। सारे मधुमक्खियों को भगाकर ये थीफ, हनी थीफ इसको बोलते हैं। ये करता क्या है? सब लेकर उसे बॉटल में डालकर बेचता है। मेहनत किसकी और भोग कौन रहा है? तो वैसे ही ये जो बद्ध जीव इतना पैसा इकट्ठा कर रहा है, यहां से वहां से, ये बिजनेस वो स्कीम, इसमें इन्वेस्टमेंट उसमें, इतना सारा पैसा इकट्ठा किया, सारे छत्ते में भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। और फिर काल कौन है? वो उसके समान है। वो काल आता है, वो काल क्या कर रहा है? काल वेट कर रहा है, भरो और भरो और भरो। तो हमको लगता है देखो मेरा कितना अच्छा टाइम जा रहा है, और ना मेरे को और कितने, और काल करता क्या है? अब ये कई तो ऐसे बी कीपर्स होते हैं जो वहीं पे फूलों को उगाते, उनके लिए, किसके लिए? वो मधुमक्खियों के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसमें से शहद नहीं निकाल पाऊंगा, इसको ही पता है मधुमक्खी को। तो मधुमक्खी लगा हुआ है, अरे मेरे लिए देखो क्या क्या अरेंजमेंट करके रखा है, तो और खुश होता है, और खुश होता है। वैसे ही बद्ध जीव और खुश होता रहता है, देखो अभी मेरा बिजनेस इतना बढ़ गया, ये फैक्ट्री भी खुल गई, उसमें इतना फायदा हो रहा है, उसमें इतना मुनाफा हो रहा है, अभी बच्चे भी हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, और फिर वो उनके भी बिजनेस चालू हो गया, कितना सब बढ़ रहा है। और काल बैठ के देख रहा है, भर बेटा छत्ता, भरते रहे भरते रहे, जितना तू भरेगा मेरे लिए उतना ही अच्छा है। और जैसे ही हम सब मिलके, पूरा साम्राज्य मिलके सारा छत्ता भर दिया, फिर वो आता है, धुआं छोड़ता है, सबको भगा के सारा सब कुछ ले जाता है। तो इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर इसका उदाहरण हम समझें, किसका? मधुमक्खी का उदाहरण, और इस श्लोक का, इसके जो हमने श्लोक लिया था आद्यंतवंत कौंतेय, कि वो मधुमक्खी को शहद इकट्ठा करने से पहले, मध्य में और अंत में तकलीफ ही तकलीफ है कि नहीं? उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। इकट्ठा करने में इतनी तकलीफ, फिर उसको मेंटेन करने में इतनी तकलीफ, डंक खा रहे खा रही खा रही दूसरों का उस छत्ते में भरने के लिए, और फिर सब भरने के बाद वो मधुआ ले जाता है सब कुछ। तो वो भगवान, वो जो श्लोक है कि इंद्रिय भोग के आदि मध्य और अंत, ये तीनों दशाओं में दुर्दशा ही दुर्दशा। तो ये भगवान का मत है। हमको लग रहा होगा कि आप बोल रहे हैं क्या, आपको क्या पता, मैं नहीं बोल रहा, श्री भगवान उवाच का उनका श्लोक है ये। और भगवान से ज्यादा बुद्धिमान साक्षात्कारी और कौन हो सकता है। अब समाधान की प्रक्रिया, ये श्लोक है जिसमें कि वही इंद्रियों के वजह से जो हम पतन की दशा में हैं, वही इंद्रियों की समाधान की प्रक्रिया क्या है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। उन्हीं इंद्रियों को लेकर हमें क्या करना है, वही शहद को लेकर भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का अभिषेक करना है। अभिषेक में क्या इस्तेमाल करते हैं, शहद। तो वही जो कुछ हमने इकट्ठा किया है उसे जब हम भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं तो ऋषिकेन ऋषिकेश ये शुरुआत है हमारे इंद्रियों के शुद्धिकरण का। उन इंद्रियों को मारना नहीं है, खत्म नहीं करना है, उन इंद्रियों से जो कुछ हमने अर्जित किया है उसे भगवान की सेवा में लगाना है। और कैसे, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जितनी उपाधियां हमने इस भौतिक संसार में अपने इंद्रिय भोग के कार्यक्रम के लिए अपने आप को दी है या दूसरों ने हमें दी है, उन सारी उपाधियों को बहिष्कृत करते हुए, गिविंग अप ऑल ऑफ दोज मटीरियल डेजिग्नेशंस, नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न न न शूद्रो, सब कुछ न न, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न मैं ब्राह्मण, न कुछ भी क्षत्रिय वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ, कुछ नहीं, मैं केवल दास 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 अनुदास, वो है ये श्लोक का मर्म। फिर इंद्रिय भोग की शुद्ध अवस्था, अम्बरीश महाराज के इस प्रसिद्ध श्लोक से, सवै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदये। कि इसमें अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया गया है कि कैसे वो अपनी हरेक इंद्रिय को शुद्ध किए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हुए। मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों पर लगाया महाराज अम्बरीश ने, वाणी श्री कृष्ण की कीर्तिगान में, हाथ श्री कृष्ण के मंदिर मार्जन, कर्ण श्री कृष्ण के लीला श्रवण, अपनी आंखें श्री कृष्ण विग्रह का दर्शन करने में, स्पर्श इंद्रिया श्री कृष्ण भक्तों का स्पर्श करने में, अपने नासिक इंद्रिय श्री कृष्ण के चरणों के तुलसी दल की गंध को सूंघने में लगाया, पैरों को श्री कृष्ण के दिव्य तीर्थ स्थान शीश को उनके विग्रह के सामने नमन करने में, जिह्वा को श्री कृष्ण प्रसाद सेवन में, और इच्छाओं को निरंतर कृष्ण सेवा में। तो ये चरम श्लोक है जिसमें कि बताया गया है वो हमारी जो पतन दशा शुरुआत कहां से हुई, प्रकृति स्थानी कर्षति, हमारे इंद्रिय भोग के कार्यक्रम, यावत जीवित सुखम जीवित से, और ये है इंद्रियों की शुद्ध अवस्था। तो आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा है, आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें यदि तुम्हारी इन इंद्रियों को पूर्ण रूपेण, तानि सर्वाणि संयम्य, पूर्ण रूपेण सभी तुम्हारी इंद्रियों को यदि संयम में लाना है, मत परह युक्त आसीत मत परह, उसे मेरी सेवा में लगाओ। तो ये यदि हम सीक्वेंस समझ लेंगे कि हम कौन सी स्थिति पे पहुंचे हैं, अभी तक कहां थे और कहां पहुंचे हैं, पतन दशा हमारी कौन सी थी, फिर हमने क्या कार्यक्रम किया, अभी तक कार्यक्रम चल रहा है कि चैनल चेंज किया है कि नहीं, हमने साक्षात्कार की शुरुआत हुई है कि नहीं, इंद्रिय भोग के विषय में भगवान का क्या मत है वो जानना, और समाधान की प्रक्रिया, और जो अम्बरीश महाराज का उदाहरण हमने लिया, क्या हमारे वो इंद्रिय के शुद्धिकरण का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है कि नहीं। तो ये है आज के श्लोक का मर्म। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई सूचना है? आज का जो स्वीट प्रसादम है वो स्पॉन्सर किया है श्रीमती कामटे माताजी ने। भक्ति शास्त्री एग्जाम पास होने के खुशी में उन्होंने आज का स्वीट प्रसादम स्पॉन्सर किया है, तो उन्होंने उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए श्री श्री राधा मदन गोपाल शिशु गौर नेता और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। पहले अगर वो या उनके परिवार से कोई भी